नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में खालिस्तान के 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा है कि मणिपुर में सामान्य स्थिति संवाद और एकता से बहाल की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। रूस और यूक्रेन के बीच आंशिक युद्ध विराम पर चर्चा के लिए अमरीका यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के साथ सऊदी अरब में वार्ता होगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ प्रगतिशील द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के संकेत के रूप में गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी सहित तालिबान के 3 अधिकारियों पर घोषित इनामी राशि हटाई। और भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता। पुरुषों का फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सितंबर 2024 में चंडीगढ़ बम हमले के मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 4 आतंकवादियों को आरोपी बनाया है। अभिकरण ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आरोपियों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह सरदू उर्फ रिंदा और अमरीका स्थित आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसी शामिल हैं। आरोप पत्र चंडीगढ़ की NIA की विशेष अदालत में पेश किया गया है। सभी 4 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम UAPA, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा हमले में सहयोग करने और साजिश रचने की भूमिका से संबंधित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। NIA ने कहा है कि 2 आतंकवादी रिंदा और हैप्पी पसी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा है कि सभी समस्याओं का समाधान संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है। आज इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संवाद की शक्ति पर जोर दिया और कहा कि जब लोग एक साथ होते हैं तो समाधान आसानी से मिल जाता है। इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मणिपुर में शांति प्रक्रिया के बारे में कहा कि राज्य की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन इसमें निरंतर प्रगति की आवश्यकता है।
मणिपुर हाईकोर्ट के 12 साल स्थापित होने पर मैं बधाई देता हूं और मणिपुर में जो शांति की प्रक्रिया चल रही है उसमें और तेजी आई और मणिपुर विकास के रास्ते में आगे बढ़ते हुए भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 22 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 2 महिला नक्सली हैं। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक उलंडोन योक ने बताया कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें 6 पर 11 लाख रुपए का पुरस्कार था।
इसमें AOB के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स, तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स, कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और हमारे जो पुलिस बल और CRPF के बल हैं इनके द्वारा इसमें प्रयास किया गया।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत इन नक्सलियों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है। बीते 20 मार्च को छत्तीसगढ़ में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 30 माओवादी मारे गए थे। बीते यदि एक साल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 380 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। करीब 1,070 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं करीब 1,200 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राज्यसभा में दिए गए अपने वक्तव्य में इस संकल्प को दोहराया है कि अगले एक साल यानी मार्च 2026 तक देश को नक्सल समस्या से मुक्त कर दिया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 2 जवान घायल हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में 9वें जेके टायर सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा जागरूकता को प्रोत्साहन देना है। संवाददाताओं से बातचीत में किरेन रिजिजू ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। श्री रिजिजू ने कहा कि विश्व में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना भारत में होती है।
रोड सेफ्टी हर एक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यकता है। आप सड़क पे जब जाते हैं तो सड़क में दुर्घटना ना हो उसके लिए कई चीजें हैं, गाड़ी चलाने का, लेन मेंटेन करने का, ड्राइविंग स्किल, रूल फॉलो करना, किस स्पीड में जाना। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसा हमारा देश में होता है, तो ये चिंता का विषय है।
दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने आज नई दिल्ली में महात्मा गांधी से संबंधित वस्तुएं और दस्तावेज राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को सौंपे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस अवसर पर उपस्थित थे। रूस और यूक्रेन के बीच आंशिक युद्ध विराम पर चर्चा के लिए अमरीका और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के साथ सऊदी अरब में वार्ता होगी। ये वार्ता ऊर्जा सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला रोकने के बारे में होगी। इस बीच यूक्रेन में आज रूस के ड्रोन हमले में 7 लोग मारे गए। यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं ने बताया है कि रूस ने यूक्रेन में 147 ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि राजधानी कीव में हुए हमले यूक्रेन की रोजाना की घटना है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी समेत तालिबान के 3 प्रमुख लोगों पर इनाम की घोषणा वापस ले ली है। एक रिपोर्ट।
हक्कानी पर आरोप है कि वे पश्चिम समर्थित पूर्व अफगानी सरकार पर हमला करने के नेटवर्क का मुखिया था। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने आज कहा कि अमेरिका सरकार ने अब्दुल अजीज हक्कानी और यहाया हक्कानी पर भी घोषित इनाम हटा लिए हैं। अफगानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाकिर जलाली ने कहा कि शुक्रवार को तालिबान द्वारा अमरीकी कैदी जॉर्ज ग्लेजमैन की रिहाई और अमेरिका द्वारा 3 तालिबानी नेताओं पर से इनाम हटाने से पता चलता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौतों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अमेरिका के संबंधों में मौजूदा घटनाक्रम दोनों सरकारों के बीच व्यवहारिक तथा वास्तविक संबंधों का अच्छा उदाहरण है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
लगभग 3 महीने के बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार से अपनी निकासी को थोड़ा कम किया, जिससे शेयर बाजारों में उत्साह बना रहा। एक रिपोर्ट।
वैश्विक चिंताओं के कम होने और रूस यूक्रेन संघर्ष में संभावित कमी से भी बाजार सकारात्मक था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस महीने 21 मार्च तक इक्विटी से एफपीआई की बिकवाली घटकर 31,719 करोड़ रुपए रह गई, जबकि 13 मार्च तक ये आंकड़ा 30,016 करोड़ रुपए का था। एफपीआई ने पिछले 5 कारोबारी सत्रों में से 3 में भारतीय इक्विटी में काफी दिलचस्पी दिखाई, जिसमें शुक्रवार को लगभग 7,500 करोड़ रुपए, बृहस्पतिवार को 3,239 करोड़ रुपए और मंगलवार को 696 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर शामिल हैं। इस महीने 21 मार्च तक एफपीआई ने भारत के ऋण बाजारों में 36,750 करोड़ रुपए डाले। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 57-34 से हराया। आज ही भारतीय पुरुष टीम फाइनल में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। खेलो इंडिया पैरा खेलों में आज निशानेबाजी, पावर लिफ्टिंग, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावरलिफ्टिंग में पंजाब की जसप्रीत कौर ने 45 किलो भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 101 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में ईश्वर रामपाल टॉक ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में सुमेधा पाठक ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल प्रोन मिक्स्ड SH1 श्रेणी में सागर बालासाहेब कटले ने स्वर्ण पदक जीता। और अब ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल से। जी अभिषेक, कुछ स्पर्धाएं तो अभी हमने बताई हैं, आप बताइए आज दिन में क्या कुछ खास इवेंट्स रहे जिनमें हमारे खिलाड़ी छाए रहे।
आज सबसे खास इवेंट रहा क्योंकि आज से जेएलएन स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसमें पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इसमें सोनम पाटिल ने रजत और कवि प्रिया राजा ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स की बात करें तो पुरुषों की भाला फेंक F12 F13 श्रेणी में ईश्वर रामपाल टाक ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मंजीत ने रजत और अक्षय कुमार मीणा के हिस्से कांस्य पदक आया। वहीं महिला वर्ग के शॉटपुट F12 F20 श्रेणी में खुशबू किर ने स्वर्ण, मुथु मीना ने रजत और अनन्या बंसल के हिस्से कांस्य पदक आया।
धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। चेन्नई में आईपीएल T20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 7 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। नूर अहमद ने अब तक 4 विकेट लिए हैं। आज चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से हराया। हैदराबाद के 287 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम 6 विकेट पर 242 रन ही बना पाई। ध्रुव जुएल ने 70 और संजू सैमसन ने 66 रन की पारी खेली। इससे पहले ईशान किशन के नाबाद 106 रन की बदौलत हैदराबाद ने प्रतियोगिता का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 286 रन बनाए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे क्षय रोग से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉ उर्वशी बी सिंह तथा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ रोहित कुमार शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से क्षय रोग की पहचान करने और समय पर उसका निदान और उपचार को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर 0112342100 और 0112331444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने केरल माहे तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात के अलग अलग स्थानों पर उमस भरी गर्मी के बने रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य भाग और महाराष्ट्र में आने वाले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। प्रिया मंडल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में 4 खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा है कि मणिपुर में सामान्य स्थिति संवाद और एकता से बहाल की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। रूस और यूक्रेन के बीच आंशिक युद्धविराम पर चर्चा के लिए अमरीका और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के साथ सऊदी अरब में वार्ता होगी। अमरीका ने अफगानिस्तान के साथ प्रगतिशील द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के संकेत के रूप में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी सहित तालिबान के 3 अधिकारियों पर घोषित इनामी राशि हटाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।